कि मैं एक बीच का कर्मचारी हूं, न मैं लेने वाला हूं न देने वाला हूं। कहीं अभिमान हो जाए, ये तो है भगवान की वस्तु दी हुई और ये भगवान के सब सेवक हैं। बीच में मुझे ये ड्यूटी दी गई जे प्रभु की चीजें प्रभु के लोगों को दो। जब इसमें अब अभिमान है जो मैं देने वाला हूँ, जैसा कि हम लोगों को हो जाता है, जैसे हम मठ के रक्षक बनते हैं ना, तो सोचते हैं जब मैं इसका मालिक बन गया। किसी चीज के लिए घर में भगवान ने परिवार दिया तो सोचते हैं मैं इसका मालिक हूँ परिवार का। ठाकुर जी का मंदिर है तो हम समझते हैं कि मैं ठाकुर जी के जितना चीज है ठाकुर का भी मैं ही मालिक हूँ, उनका सेवक अभिमान नहीं। तो मैं तो सेवक केवल हूँ, प्रभु की चीजें प्रभु के आर्डर से प्रभु की चीजें ही प्रभु के लोगों को दे रहा हूँ। मुझे अभिमान अंदर में कभी ना आ जाए कि मैं देने वाला हूँ, इसलिए ऐसा करता हूँ। ऐसे ही हम लोगों को भी हो, नहीं तो अभिमान हो जाएगा। इसलिए किसी को दान मत दो, न तो दान देने से उसका फल लेना पड़ेगा और दान ग्रहण करने से भी उसके अंदर में जितने पाप प्रवृत्ति पुण्य प्रवृत्ति है वह सब हम में संक्रमित होंगे, इसलिए वो भी नहीं करना है। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, माधुकरी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। हम लोग कुछ भटक गए हैं अपने रास्ते से। जो चीज की जरूरत है बस जीवन निर्वाह के लिए प्रभु का प्रसाद ग्रहण करके माधुकरी के रूप में जीवन निर्वाह करके भजन करते थे। अब हम लोग संचय करते हैं तो हमारी भी दशा मधुकरी जैसे मधुमक्खी की होती है, वैसे हमारी भी दशा होती है। बिलबिलाते हैं, बंदर पकड़ करके नोच करके और खा जाते हैं, मधुमक्खियों के साथ में छत्ते को ही खा जाते हैं। और कुछ मधु संग्रह करने वाले लोग पूरे छत्ते को ले लेते हैं और कपड़े में लेकर के ऐंट देते हैं, मधुमक्खी और उसके बच्चे टच्चे अंडे फंडे सब मधु बन जाती है और सब मारे जाते हैं। तो हमारी भी यह दशा होती है। उदाहरण सुन करके भी हम लोगों को चेत नहीं है, इसलिए न तो दान लो और न दान दो। दो किंतु किस रूप में, प्रभु के सेवा के रूप में इसको दे। अभिमान ना रहे कि मैं दाता हूँ और मैं ग्रहिता हूँ। जदलिया भी तो ये ठाकुर की सेवा में, और एक दाना भी उसका यदि हम लोगों ने कुछ लिया तो भक्ति तो दूर हो जाएगी, साथ साथ उसका कर्म फल भी हमारे अंदर में संक्रमित हो जाएगा। विषय का अन्न खाने से क्या होता है, मलिन चित्त हो जाता है, इसलिए भजन नहीं होता। कोई साधु व्यक्ति, एक वेश्या कई भंडारा वृंदावन में कर रही थी, कुछ साधुन हो साधुन बन गई और कुछ रुपया जो कमाया था भंडारे में लड्डू और पेड़े बर्फी और शुद्ध घी की पूरी हलवा मान भोग खीर ये सब बनाया और वृंदा ने सब संतों को निमंत्रण कर दिया। जो संत थे वो तो नहीं आए, किंतु संत का वेश लेने वाले वो लोग आ गए। तो उनमें से एक अभी नवीन कोई था साधक, किंतु था अच्छा, भजन करने की लालसा थी, अभी भजन में प्रवेश नहीं किया था, भजन किंतु करना चाहता। वो भी धोखे में आ गया वहाँ और उसके दिए हुए भंडारे में बैठ करके खूब माल छका छका माने खूब खाया। खाने के बाद में जब उठा तो एक आंगन से एक घर हो करके आना था और उस पर एक सोने की अंगूठी टेबल पर रखी थी। वो खा करके आ रहा था घर के माध्यम से और टेबल पर देखा सुंदर सोने की अंगूठी रखी गई है। बस उसको भी हाथ से दाहिना हाथ तो जूठा था, बाएं हाथ से उठा करके पॉकेट में रख करके चल। थोड़ी देर के बाद में चला गया, बेश प्रसन्न हो रहा था। गया, एक दो दिन बीता, कुछ खाया नहीं, वो सब टट्टी हो गया, पेशाब से निकल गया। पेट जब खाली हो गया उसकी बुद्धिया चेरी, मैंने अंगूठी आज तक जीवन में चोरी नहीं की, अरे ये अंगूठी हमने चोरी की क्यों की है? तो वो खुद गया और कहा जी भाई मैंने ये अंगूठी ये चोरी की थी, ये आपकी चीज। अंगूठी वहाँ पर रख दिया। तो कुछ थे आदमी उसको मारने दौड़े, कुछ ने गाली दिया, और जो साध्वी वृत्ति के थे जो नहीं नहीं ये चोर नहीं है, इसकी बुद्धि किसी प्रकार से खराब हुई। क्यों खराब हुई वो पूछने लगा वो साधु, अच्छा भाई ये भंडारा किसने दिया? तो अमुक बाई जी ने दिया। तो वो बाई जी का खबर लगाया, ये बाई जी कौन है? तो वो पता लगा कि कोई गड़बड़ की स्त्री है, और उसने उस पेशे में जो पैसा कमाया उसका ये बना है, और उसका आज मैंने खाया तो आज हमारा मन एक भंडारे खाने में ऐसा हो। आज जो दिन रात भंडारे खाने के लिए जुटते हैं, अधिकांश भंडारे ऐसे ही होते हैं वृंदावन, बहुत कम अच्छे संत लोगों का होता है, बहुत कम। घर में जाते हैं किसी को लाने के लिए, मथुरापुरी संत की है, किंतु फिर भी कर्मी लोग भी हैं, वो अपने बच्चे का रोग ऐंच करके तुम लोगों को दे देंगे, ऐसा होता है कभी? ऐंच दिया, ऐंच करके रख दिया, ये साधु लोग कोई आएंगे भिखारी उनको दे देंगे, वो सब रोग टोग सब उसी में आ जाएगा, मालूम नहीं पड़ता। इसलिए इस सब चीजों में सावधान रख करके आप लोग साधन भजन कीजिए, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, तब फिर ये सब चुनने के हम लोग अधिकारी होंगे। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं बृहत भगवतामृत। गोप कुमार जी वैकुंठ धाम में गए हैं। हम तो वैकुंठ धाम को छोड़ दो, स्वर्ग को छोड़ दो, अभी मैं बंबई गया था, यहाँ पर एक श्रोता बंबई की हैं, यहाँ आती हैं सुनने के लिए परिकथा, उनका मथुरा में भी घर है, तो उन्होंने कहा था जी सर जब बंबई जाएंगे तो हमारे घर में आएंगे। तो गया तो उनका लड़का भी, बड़ा अच्छा लड़का, बहुत ही अच्छा। तो लड़का उसकी बहू वो सब आई जी हमारे घर में चली, तो हम लोग गए, कार ले आया, कार से ही अपने उनका कार अपना है, कार से ले गया। मैं गया तो वहाँ पर भूल भुलैया में पड़ गया, सचमुच में ऐसा सुंदर फर्श बनाया है, ऐने की तरफ में चमकता है, और मुझे भ्रम हो गया जैसे दुर्योधन को भ्रम हो गया ना युधिष्ठिर महाराज जी के राय वो सभा में, जिसको मैं दानव ने बुलाया बनाया, मैं तो देखता ही रह गया वाह। इसीलिए महाप्रभु जी या महाप्रभु के भक्त लोग किसी भी राजा महाराजा के घर में नहीं जाते थे, साधारण लोगों को भोग की कामना आ जाएगी, ओ हमारा भी ऐसे ही घर होता, हमारा ऐसा ही आश्रम होता, ये कैसे कैसे चीजें लगी हैं, नहीं बना सकते तभी एक कामना भीतर से जग जाएगी। जब इसी लोक में बंबई में ही ऐसी, और उससे हजारों और लाखें लोग ऐसे होंगे जो उनसे भी बड़े बड़े होंगे, हम तो साधारण एक परिवार में गए तो ऐसा देखें, स्वर्ग की आप लोग कामना नहीं समझ नहीं सकते, स्वर्ग में कितना वैभव है, जाएंगे तो एकदम भूल जाएंगे ये सब चीज। वैकुंठ में जाने पर क्या होगा? कर्म स ऐश्वर्य कोई वैकुंठ में पहुंच करके वैकुंठ से निकलने की कोई भी कामना संकल्प नहीं कर सकता, इतना सुख की प्रचुरता वहां पर है, इतना रमणीय है, कोई आदमी बूढ़ा नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं, कोई जन्म नहीं है, कोई रोग नहीं है, स्वर्ग में है, महाजन तपस्त तक है, पृथ्वी के आवरण में जितने तो अष्ट आवरण है उनमें भी है, किंतु वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, नित्य नवीन सुख वहां है, वैभव की अंतिम सीमा बिंदु है, जो इच्छा वहां की मिट्टी भी चिन्मय है, बातचीत कर सकती है, सब कुछ करने में समर्थ, पेड़ वहां पर कैसे हैं? कल्पतरु के पेड़, भूमि कैसी है? चिंता मणिमयी, तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, ऐसा वो स्थान है वैकुंठ, वहां ये पहुंचा है। नारद जी कहते हैं अरे बड़े ये तो गंभीर बात, यहाँ पर तुम्हारा मुख सुखा हुआ देखते हैं कि मुख सुखना मैंने क्या,
मन खराब,
चिंतित हो, तुम दुखी क्यों है? इस लोक में आकर के तो कोई दुखी रह नहीं सकता और तुमको हम दुखी देखते हैं, क्या बात है? तुमको किसी चीज का अभाव है, किसी चीज का दुख है, क्या है? तो ये ऐसा वहां एक दुख है वो सबको नहीं होगा, किसी विशेष को हो सकता है जो इनको हुआ, किंतु कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यक्त नहीं कर सकते, कुछ बातें तो हैं जो व्यक्त हम कर देंगे, किंतु किसी कारण से हमें क्षोभ या दुख हुआ है उसको किसी से कहा नहीं जा सकता ना? बहुत से दुख हैं, मैया बार बार पूछते बेटी कैसे तुम दुखी है, नहीं बतलाए, बेटा क्यों दुखी है नहीं बतलाए, बाप को भी नहीं बतलाया, भाई को भी नहीं, बहन को भी नहीं, कोई बुजम फ्रेंड हुआ, बुजम फ्रेंड समझते हैं ना,
अंतरंग
अंतरंग या अंतरंग सहेली है, तो वो किसी ने किसी प्रकार से वो कांटा निकाल लेगी, समझ जाएगी उस भाव को, किंतु कुछ ऐसे भी भाव हैं जिसको कहा नहीं जा सकता, व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, तो वैकुंठ में ऐसा ही सुख है या दुख है कुछ जो कि व्यक्त नहीं किया जा सकता। नारद जी भी सर्वअंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, उन्होंने देखा, ध्यान लगाया, आंख बंद की, क्यों दुखी है? दुखी जब देखा जी, ये दुखी है तो बड़े आनंदित हो गए। ऐसा भी कुछ दुख है जिसको देख करके आदमी आनंद हो जाएगा है? क्या हो सकता है? यही सब चीजें व्यक्त करना जरा कठिन है। कोई दुख है, दुखी है, कोई सुखी है। उद्धव जी जाते हैं ब्रज में, आनंद जी डकार मार करके रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं? कृष्ण के लिए। ऐसा पुत्र सबको नहीं, और वो हमें छोड़ करके चला गया, बड़े दुखी हो रहे हैं, और ये मन ही मन क्या हो रहे हैं उद्धव जी, ओह आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं जो भगवान के लिए रो रहा है। सब लोग रोते हैं अपने लिए, रोते हैं सब अपने लिए, भाई मर गया तो रोते हैं किसके लिए? भाई तो मर गया ना, तो भाई के लिए रोते हैं ना अपने लिए? मालूम तो होता है जी भाई के लिए रो रहे हैं, किंतु भाई के लिए नहीं रोते, भाई रहता तो हमारी सब प्रकार से सहायता, अब मैं असहाय हो गया इसलिए तो रोते हैं। पिताजी मर गए इसलिए कि पिताजी रहते तो हमारी जो मनोकामनाएं थी सहज रूप में हो जाती। स्त्री मर गई, बड़ी सुंदरी खूबसूरत थी, बड़ी सेवा करती थी, खाट पर पलंग पर बैठे बैठे पानी और सब कुछ खाना भोजन सब देती थी, अब वो चली गई, हाय हाय रोते हैं। तो स्त्री के लिए रो रहे हैं, अपने लिए रोते हैं, तो सब लोग अपने लिए रोते हैं। किसी स्थिति में पिता पुत्र के लिए रोता है वो भी, किंतु अपने लिए ही रोता है, मालूम नहीं पड़ता, किंतु है असल में वहीं पर। तो यहां पर मैं देखता हूं ये व्यक्ति जो नंद बाबा हैं आज कृष्ण के लिए सचमुच रो रहे हैं, अपने लिए नहीं, कितना अगाध प्रेम इनके अंदर में है, है? अब सोच रहे हैं यदि कहूं नंद महाराजा विश्व ब्रह्मांड में सबसे परम सौभाग्यवान है ये कहूं, ये कहना ही उचित है, ऐसा तो आदमी नहीं देखा जाता। कृष्ण के विरह में तड़फ रहा कोई हो ऐसा हमको थोड़ा सा भी हो जाता है, एक बार आंसुओं के बूंद कृष्ण के लिए निकल आता भगवान के लिए, हमारा जीवन सार्थक हो जाते हैं, तो निकलता है आंसू, हृदय द्रवित नहीं होता है, पुलकित नहीं होता। महाप्रभु जी स्वयं कह रहे हैं क्या वो श्लोक,
नौ प्रेम बंधस्य गराधि
नहरो नयनंगल दास सुधारया बदनं गदगद रुद्धयादि पुलकैर्निहितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, भविष्यति मैंने क्या हमें ऐसा अवसर होगा जिस दिन आपका नाम लेते लेते आंखों से आंखें तरल हो जाएंगी, धारावत अपिछिन्न गति से हमारे आंसुओं का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा और रोमांच हो गए, हृदय द्रवित हो जाएगा, कभी जमीन में लौटूंगा, कभी हंसूंगा, कभी रोऊंगा, कभी गाऊंगा। आज ये सब उद्धव जी में देख रहे हैं, कहें आज कितना मैं सौभाग्यशाली हूं जी, इतना महान व्यक्ति का मैं दर्शन पा रहा हूं। क्या कहूं, आप बड़े सौभाग्यवान हैं, किंतु नहीं ऐसा कह नहीं सकता। एक आदमी रो रहे, मैं कह जी खूब रोवो खूब रोवो, ये तो मैं कहूं जैसे महाराज आप चुप होइए। तो जो आदमी कृष्ण के लिए रो रहा है वो आज जगत के लिए यही अभिलषणीय है, अभिलाषा करने जो गए हमारा भी ऐसे दशा हो, वो यदि कृष्ण प्रेम में रो रहा हो इतना सौभाग्यवान, उसको मैं कैसे कहूं जरो रो मत भी, और वो दोनों में कोई नहीं कर सकता। क्या कहूं उनको, कैसे समझाऊं, नंद बाबा के लिए एक भी शब्द नहीं निकल रहा है उनके लिए, हृदय में आनंद है जो ऐसे महापुरुष का दर्शन करके हमारा जीवन आज कृतार्थ हो गया और वो रो रहे हैं। ऐसे ही नारद जी के मन में ऐसी भावना हुई, वो ये कितना बड़ा भारी सौभाग्यवान है जो यहाँ पर भी ये दुखी हो रहा है। किस लिए दुखी हो रहा है, ये चाहता है जे नारायण कृष्ण हो और इनके साथ में गोचारण करूं, इनके साथ में रहूं, ये गलबहिया हमारे ऊपर में दे दे, मैं गलबहिया दे करके मैं मित्र जैसा हो जाऊं दोनों, या कृष्ण का अरे गोप कुमार अरे गायों को जरा इधर से ले आना, तो इधर गाय प्यासी है, इनको पानी पिला देना और यह इधर लाओ, भर करके ले आओ, मैं कृष्ण का आदेश पालन करने के लिए बड़े प्रेम के साथ में जाऊंगा। कभी हमको कृष्ण गले से लगा लेंगे, हम कभी लगाएंगे, कभी कृष्ण खाते होंगे जूठा अपना हमारे मुख में दे देंगे, और कभी मैं उनको अपना जूठा खिलाऊंगा, कभी कृष्ण सो रहे होंगे यशोदा के पलंग पर और मैं झट पायों में धूल भरी हुई वृंदावन की और एकदम ऐसे ही उनके घर में पहुंच गया और उसके पलंग पर पहुंच करके कृष्ण सो रहे हैं, ये भी सोते सोते जाकर के पकड़ लिया, नहीं अभी सो रहा है, गायें आ गई दरवाजे पर और तू सो रहा है, उठ उठ उठ। ये सब करना चाहता है, आलिंगन चुंबन इत्यादि जो सहज रूप में सखाओं के लिए उपलब्ध है ऐसा चाहते हैं। किंतु नारायण क्या करते हैं, नारायण के सामने जाता है, महाराज मंगल हो, ऐसे हाथ मुद्रा दिखलाते हैं, कोई हमें प्रणाम किया ना, तो साधु लोग क्या करते हैं, माने क्या हमारा कल्याण है, मंगल तुम्हारा हो, अनित का नारायण नमो नारायण, तो नमो नारायण कर लो, अनित ऐसे बहुत सारे प्रणाम कर रहे हैं तो क्या करेगा वो, नारायण कहते हैं अभय मुद्रा इसको कहते हैं, मंगलमय मुद्रा, अभय हो, अभय मुद्रा उनको दिखला रहे, कल्याण तुम्हारा हो। किंतु इसका मन करता है जब मैं उठ करके जाऊं दौड़ करके इनको गले से लगा लूं, एक साथ में बंसी बजाएं, किंतु ये हो नहीं पाता, इच्छा होती रात में इनके साथ ही एक पलंग पर सोऊं, किंतु लक्ष्मी जी चलाकी चतुराई किसी प्रकार से बाहर कर देती हैं, और यदि नहीं निकले वहां से तो क्या करेंगी, लक्ष्मी जी जय विजय को बुला लेंगी, कहे ये मानता नहीं है इसको, जरा यदि ऐसे नहीं है तो ऐसे इसको बाहर कर दो, तो उसे बाहर किसी न किसी प्रकार से कर देंगे। और ये जब गाता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री यशोदा तनय प्रसिद्ध, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, बंसी में बजाता है और फिर अपने आप उच्चारण करके नृत्य करने लगता है, अरे वैकुंठ वाले मिल जाते हैं सब, आप ये देखो ये कैसा पगला है, अरे नारायण प्रभु जो समस्त जगदीश्वर हैं, जगदीश्वरों के ईश्वर, इनको ये गोपाल बतलाता है, गैया चराता है, ये रखाल बनाता है, देखो तो इनकी कितनी बड़ी बदनामी कर रहा है। दूध दोहने वाला वो बतलाता है इसे। और गोपालनिया जो निम्न जाति की हैं, उनका पति बतला रहा है, और यशोदा जो ग्वालनी है उसका पुत्र बतलाते हैं। अरे वो किसका पुत्र है? ब्रह्मा जैसे, शंकर जैसे सब उनके लोग हैं जो बनाए हुए सृष्टि में, और उसको किसी का पुत्र बतला रहा है किसी को। अरे ये देखो ये क्या कर, उनको कहता है जो ग्वालनियों के घर में घुस करके चोरी करता है उसको चोर बतलाते हैं। कहते हैं जैसे अरे ये प्रभु का तो ये बदनामी हो रही है। अरे इनको कहो सहस्त्र मुख वाले जो शस्त्र मुख वाले जो विष्णु हैं उनके भी ये मूल हैं, संता भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम गगन सदृशम इत्यादि, ऐसे इनकी स्तुति होनी चाहिए ना। सबको आशीर्वाद देने वाले, कल्याण करने वाले प्रभु के रूप में हैं। इनको ग्वाला, चोर, झूठा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हंसते हैं, कोई कोई कहते हैं नहीं भाई ये नारायण की ही, नारायण ही तो कृष्ण बने थे और लीला की थी, इसमें कोई बात नहीं। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, और दिल्लगी करते हैं इससे। अरे भाई ये बैकुंठ है, ये भूलोक नहीं है, यहाँ पर ये सब बातें नहीं होनी चाहिए ना। कोई कहते नहीं ये ठीक है, प्रभु अपनी लीला करते हैं आनंद के लिए, भक्तों के विनोद के लिए, इसलिए नारायण ही कृष्ण और राम इत्यादि के रूप में। कोई कुछ कर रहे, किंतु इससे इसकी तृप्ति नहीं, उसको बहाँ बार लज्जित होना पड़ता है। मान लिया कि कोई ग्वारिया है यहाँ का, श्रीदाम है, सुबल है, कृष्ण द्वारकाधीश है, सुधर्मा सभा में कृष्ण बैठे, कैसे बैठे हैं? महाराज धीराज द्वारकाधीश के रूप में बैठे हैं। उग्रसेन, वसुदेव जी, बलदेव प्रभु और जदवंशी जो वृद्ध हैं उनके दाहिने तरफ में है, गर्ग इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं वो सामने बैठे हुए हैं, गद सांब इत्यादि और उनके पुत्र अनिरुद्ध प्रद्युम्न सब उनके बाएं तरफ में बैठे हैं, पीछे चीक में सत्यभामा रुक्मणी प्रभृति रानियां देवकी इत्यादि माताएं सब चीख समझती हैं, चीख के अंदर से उधर में भीतर में बैठी हैं। उस सभा में एक वो किशोर यदि वहां पर जाए, कैसा कछनी काछे हुए, हाथ में लकुटिया टेढ़ी में ही, बंसी हाथ में हो बांस की, और यहाँ पर मोर का पंख लगा लिया हो ना? अभी गैया चरा करके शाम को आता है, धूल धूसरी तो उसके कपड़े लगते, वो यदि उस सभा में पहुंच जाए कृष्ण कहेंगे ये कहाँ का आफत आया, ये तो अभी हमारा गला पकड़ लेगा। तो कृष्ण चुपचाप ऐसे बैठ जाएंगे और देख करके भी नहीं देखेंगे, नहीं देख करके भी नहीं देखेंगे। उसका इतना उत्साह के साथ में आया था बेचारा, उसका उत्साह क्या होगा? यदि मान ले कि कृष्ण अपने भक्त वात्सल्यता से, उदारता से उसे बुला करके अपने पास भी बैठाए तो नहीं बैठेगा, देखा गया इधर इतना वैभव, ये कैसे छत्र, कैसा चामर, कितने ये सब लोग हैं, और अपना देख करके उसको लज्जा आएगी, वो बैठेगा नहीं, लौट करके चला जाएगा। जहाँ पर कि रुक्मणी सत्यभामा प्रभृति रानियां हों, हीरे जवाहरातों के आभूषणों से मंडित हों, वहाँ पर कोई दधी का मटका लेकर सिर पर ना, और चुंदरी और ओढ़नी साधारण रूप में, और वो लाल लाल क्या होता है, गुंजा माला लगा ले बिना पैसे वाला, और फूल की ये लगा ले, वहाँ पर जाएगी? इसलिए कभी नहीं गोपियाँ जाती, वहाँ पर उनका आदर नहीं होगा, वो जगह ही नहीं उसके। ये सोच रहे हैं ये जो गोप कुमार है ये इतना ऊंचा स्थान का है, कृष्ण का अपना मित्र है, वो समझ गए इसको यहाँ पर कभी भी संतोष नहीं हो सकता है, किंतु अभी स्वरूप से भ्रष्ट है, अभी स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, वैसे ही हम लोगों में से बहुत से ऐसे होंगे जिसका स्वरूप गोपी का भी हो सकता है, सखा का भी हो सकता है, यदि उनको सौभाग्य ऐसा हो कि वो स्वर्ग में या बैकुंठ में जाए, उनको अच्छा नहीं लगेगा वहाँ। हो सकता है नारद जी आए और उनमें से किसी का एक स्वरूप देख लें और देखे ये तो खास राधा जी की किंकरी है, किसी से कहेंगे नहीं, किंतु मन ही मन में उसको प्रणाम करेंगे। भले ही यहाँ पर उसको स्वरूप की उपलब्धि नहीं, किंतु वो समझ जाएंगे, गुरु समझ सकते हैं। ऐसे ही आज गोप कुमार का भाव देखकर नारद जी समझ गए, बड़े प्रसन्न भए। प्रसन्न होकर के क्या कहें न कहें सोच में पड़ गए और फिर उनको बताया, ओ मैंने नाड़ी देखा, आपको जो रोग है ये रोग साधारण रोग नहीं, इस बैकुंठ में इसका इलाज नहीं है, इसकी दवा बैकुंठ में नहीं है, यहाँ रहने से ये मर्ज बढ़ जाएगा। अब इसके संबंध में मैं तुमको कुछ बतला रहा हूं, तुम असंकोच स्नेह चाहते हो, जिसको कहते हैं विश्रम भाव, बैकुंठ में संभ्रम भाव। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि संभ्रम प्रीति ते मोर ऐसा शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रीति, प्रेम है किंतु वहां पर ऐश्वर्य है अधिक, प्रभाव अधिक है, और वो ऐश्वर्य के भाव से डर करके उनकी सेवा करता है। रामचंद्र जी पलंग के ऊपर में है और हनुमान जी क्या है नीचे बैठे हैं, और नीचे से थोड़ा सा खड़े होकर के ठंड के दिनों में रामचंद्र जी का पद संवाहन करना है, क्या करेंगे वो नीचे से रह करके किसी प्रकार से रजाई के ऊपर से थोड़ा थोड़ा। जिसको संभ्रम भाव नहीं है, विगत संभव, संभव माने ऐश्वर्य भाव, अंतर दोनों में नहीं है, वो ऐसे नहीं, वो विगत संभव करके प्रेम से सेवा करता, तो भगवान उस सेवा से ऐश्वर्यमय सेवा से प्रसन्न तो हो जाएंगे। किंतु जैसे नारद जी हैं, नारद जी की बात छोड़ दो तो सब रसों में जय विजय और सब भगवान के सब लोग पार्षद हैं, लक्ष्मी जी इत्यादि, इनका प्रेम विश्रम्भ नहीं है बल्कि क्या है
संभ्रम,
संभ्रम सम्यक रूप, भ्रम, भ्रम माने उनका ऐश्वर्य देख करके और अपना छोटापन देख करके, क्षुद्रता देख करके बीच में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है, डर जैसा, इसको कहते हैं संभ्रम, ये ऐश्वर्य के द्वारा होता है। इसलिए ऐश्वर्य के द्वारा शिथिल प्रेम में प्रभु का इतना भाव है, किंतु अभी यदि हम करना चाहें इस बद्ध अवस्था में उसका भान करने तो अपराध हो जाएगा। यद्यपि यह शास्त्र में लिखा है विश्रम है न गुरु सेवा, विषम रूप में गुरु की सेवा होनी चाहिए, तो यहाँ पर विषम का तात्पर्य ये जब बंधु किया, गुरु जी को बंधु समझो, बंधु जैसे माता पिता भाई बंधु होते हैं मित्र, ऐसे सेवा करो जैसे कि घर में कोई बंधु आ गया तो हम कहे देखो भाई इसके लिए कुछ खाने के लिए लाओ, तब तुम जाएगा, तुम्हारा कोई मित्र आ गया तो हम कहेंगे जैसे भाई तुम इसके लिए कुछ खाने लाओ, इसके लिए देखो सुनो ये सब कहेंगे, क्यों अपने आप करेगा, आपने आप करेगा। इसलिए यदि सेवक उत्तम है तो बिना गुरु के आदेश के गुरु के मन में जो चीज है उसको अपने आप करेगा, ये उत्तम का लक्षण है, जो कहने पर करता है वो मध्यम है, और जो कहने पर भी कहता है, गुरु जी ने कहा जाओ महाराज जी को बुला लो, तो उत्तर करेगा महाराज जी अब तो शाम हो गई है, अंधकार हो रहा है, तो गुरु जी समझे अंधकार है इसलिए इसको ऑर्डर नहीं दे। तो गुरु जी ने नहीं नहीं अंधकार हो गया है तो क्या है, तो जाओ जाओ। महाराज जी रास्ते में बहुत कुत्ते हैं, माने क्या
जाने का इच्छा नहीं,
कहा जी कुत्ता है तो लकड़ी ले लेना हाथ में डंडे, कोई बात नहीं। गुरु जी कहा डंडे ले लेना। अच्छा मैं जा रहा हूँ किंतु यदि न मिले तो, यदि कहीं चले गए हैं तो हमारे जैसे ठेठा यदि गुरु सेवक हो तो ऐसा ही प्रश्न करेगा। तो ऐसे सेवक को क्या कहते हैं, सेवक में से निकाल दो तो क्या रहेगा, बक माने बगला भगत, एक पैर से पानी में खड़ा रहता है, ध्यानस्थ हो करके रखता है, जहां मछली ने चाल दिया उठा लेगा और फिर साधु बन जाएगा। तो ऐसे ही जो बिना उत्तम भक्त होता है सेवक, वो यथार्थ सेवक है। मध्यम अधिकारी किसी हालत में लिया जा सकता है मध्यम, और ऐसे तर्क वितर्क करने वाले ये तो सेवक ही नहीं। इसलिए जो अपने गुरु के मन की बात नहीं समझेगा तो कृष्ण की मन की बात कैसे समझेगा इष्टदेव, इसलिए उन लोगों के लिए वहां जाना संभव। इसलिए प्रतिपूर्वक विषम्भ रूप से यहीं पर से गुरु की सेवा करने के लिए बल। यदि गुरु से कोई दुराव है, छिपाव है, अपना हृदय खोल करके उनके सामने नहीं रख सकते हैं तो भगवान के सामने वो क्या रख सकता है। ये तो शिक्षा का आधार है ना, शिक्षा का। यहाँ पर निष्कपट होकर के गुरु सेवा करना हम लोग सीखें तो सीखें। आज नारद जी देख रहे हैं कि कितना बड़ा भारी विषम्भ सेवक है ये, इसलिए इसकी रुचि नहीं हो रहा है। अब उसका तत्व बतलाना आरंभ किया है। ये देखो यहाँ पर बैकुंठ में ऐसा ही होता है, किंतु बैकुंठ की प्रत्येक चीजें जो होती हैं वो चिन्मयी होती, और यहाँ पर प्रभु के हजारों रूप हैं। वो हजारों रूप मैंने कैसे, इसी बैकुंठ में कहीं वराह देव हैं, कहीं मीन देव हैं, कभी कूर्म देव हैं, कहीं नृसिंह देव हैं, कहीं बामन हैं, कहीं परशुराम हैं, कहीं बलदेव हैं, कभी कौन कौन हैं। 24 प्रकार के तो लीला अवतार गिनाए गए हैं, तो 24 ही नहीं 24 कोटि से भी अधिक अनगिनत भगवान के अवतार हैं। किंतु ये अवतार एक से दूसरे नहीं हैं। यहाँ पर जो तुम देख रहे हो भगवान के प्रकोष्ठ सब, ये सब नित्य हैं, हैं एक, किंतु भक्तों के भक्ति के तारतम्य से ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, एक ही हैं, किंतु प्रतीति उनकी अपने अपने भक्ति के तारतम्य से ऐसा दिख रहे हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पर बतलाया है, सौभरी ऋषि थे वृंदावन में, जमुना के किनारे एक बन गया था अलग से कट करके, जिसको ह्रद कहते हैं, झील तो झील से छोटा, उसको काली ह्रद कहते थे। इसी में काली अपनी स्त्री और बाल बच्चों के साथ में रहता था, तो सौभरी ऋषि उसमें तपस्या करते थे 10,000 वर्ष तपस्या की। 10,000 वर्ष की आयु के बाद में गरुड़ से कुछ विरोध हो गया, अपराध हो गया, एक मत्स्य को और मच्छी को जोड़ा खाते हुए देख करके उनके अंदर में काम की भावना आई, कोई वैष्णव अपराध किया है इसलिए, और फिर उन्होंने 50 रूप धारण किए और मनघाता की 50 लड़कियों के साथ में उन्होंने शादी की, और 50 महल बनाए, 50 बगीचे बनाए, और ऐसा किया कि इंद्रपुरी भी उसके सामने लज्जित हो जाए, इतना भोगों का उपकरण, और उसके साथ में रह करके 10,000 वर्ष तक रहे। नाती पर नातियों से सब सारा घर भर गया। यहाँ पर मनधाता एक दिन आए, ये लड़कियाँ तो हमारे बिना रहती नहीं थी, आज ये लड़कियां हमें स्मरण नहीं करती और पिताजी के घर में तिहर में कभी आना ही नहीं चाहती है, क्या बात हो गया? तो जो गए और वैभव देखा, इतना वैभव। इसीलिए लड़कियां हमारी अब नहीं अपने हमारे यहां आना जाना चाहती। यहां पर जो उनके जो 50 रूप बने हैं वो कैसे रूप हैं? वो काय व्यूह है। एक हाथ उठाएगा तो सब हाथ उठाएंगे ना, एक बोलेगा तो सब बोलेंगे, एक सोएगा तो सब सोएंगे, एक चलेगा तो सब चलेंगे। वो ऐसा ही होगा, वो काय व्यूह है, काव्य में ऐसा ही होता है। इसी को कहते हैं काय व्यूह। अर्थात एक असल है बाकी नकल है, किंतु दिखता है एक ही जैसा। भगवान का ऐसा नहीं होता, भगवान का सभी रूप सभी है। विशेष करके द्वारका के ऐश्वर्य में और वृंदावन के माधुर्य में एक विशेष बात है। प्रसंग तो नहीं है, तभी बतला देते हैं, प्रसंग आ गया है। विशेष बात यहाँ पर कि कृष्ण 16,000 या 1 करोड़ या 10 करोड़ या अगिनत गोपियों में अगिनत कृष्ण हो करके उनके साथ में हाथों में कोई बैठ रहे हैं, बैठ करके नृत्य कर रहे हैं, और कोई हाथों में हाथ, कोई ऐसा स्वर अलाप कर रहे हैं, कोई कुछ, एक एक गोपी एक एक पोज कर रही है और कृष्ण भी उसी पोज में उनके साथ में नृत्य कर रहे हैं। द्वारका में एक ही साथ में कृष्ण 16,000 महिषियों के साथ में 16,000 रूपों में विवाह किया। कहीं पाशा खेल रहे हैं, कहीं चौसर खेल रहे हैं, कहीं ब्राह्मण को गैया दान दे रहे हैं, कहीं गठबंधन हो रही है, किसी घर में हवन हो रहा है, किसी घर में कुछ हो रहा है। यहाँ पर भी एक ही कृष्ण है और सभी जो कृष्ण जैसे दिखते हैं वो सभी कृष्ण है, स्वयं ही रूप जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए यहाँ पर तो ऐश्वर्य है, एक ही कृष्ण का इतना रूप प्रकाशित हुआ है, किंतु भिन्न भिन्न रूप में, किंतु सभी एक है, सब सर्वशक्तिमान है, सभी ऐश्वर्यमय है और एक एक रूप में स्वयं सब कुछ करने की है। एक कहीं घर में उनको रसोई बना करके खिला रही है, एक वहाँ खा रहे हैं, कहीं दाल पूरी खा रहे हैं, कहीं चावल दाल खा रहे हैं, कहीं भाजा खा रहे हैं, कहीं पकौड़ी ले रहे हैं, कहीं परमान्न खी रहे हैं, कभी कुछ, कहीं शादी हो रही है, कुछ हो रही है, विभिन्न। किंतु यहाँ पर ये ऐश्वर्य है, सर्वशक्तिमत्ता की वजह से इतने रूप और सभी रूप ही सत्य है। वृंदावन में क्या हुआ, वहाँ ऐश्वर्य की भूमि नहीं है, ऐश्वर्य होने पर भी वहाँ पर माधुर्य है। इस चीज को अच्छी तरह से समझे कैसे, वहाँ पर जो 16,000 या 1 करोड़ जो कृष्ण दिख रहे हैं गोपियों में, करोड़ों करोड़ गोपियों में, करोड़ों करोड़ एक एक दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, अथवा दो कृष्ण के बीच में एक गोपी, या दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, दोनों एक ही, ऐसे जो दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर तो ऐश्वर्य नहीं कल्पना करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, माधुर्य। माधुर्य मैंने नरलीला के अनुरूप, और जो नरलीला के विपरीत हो उसको कहते हैं ऐश्वर्य। जरूरी नहीं है कि ऐश्वर्य हो और न हो, किंतु नरलीला के अनुरूप है तो वो माधुर्य है। अर्जुन विश्वरूप देख करके चकित हो गए और बोले, जैसे मैं आपका सखा नहीं, आपको जो सखा है इसके लिए मैं महा अपराधी हूं, अब भविष्य में कभी भी सखा नहीं कहूंगा और कभी भी अपना साथी आपको घोड़ों को चलाने के लिए धोने के लिए नहीं बनाऊंगा, ये हमारा अपराध हो गया। नहीं, ऐश्वर्य बुद्धि आ गई, नरलीला का अनुरूप नहीं हुआ, इसलिए यह ऐश्वर्य है। वसुदेव देवकी कृष्ण को देख करके स्तन पिलाना और प्यार करना भूल गए मथुरा में कंस मारने के बाद में, ये नरलीला नहीं है, इसलिए यह ऐश्वर्य। वृंदावन में इसे बड़ी बड़े बड़े गोवर्धन को धारण कर लिया, तो भी आज यशोदा माँ का की छाती ना बहुत बढ़ गई है। क्यों? आज हमारा बेटा गोवर्धन को धारण कर लिया, बेटे का भाव ये दूर नहीं हुआ, ऐश्वर्य है किंतु बेटा का भाव आज आकर के उनके हृदय में, आज हमारा बेटा इतना बलवान जो विश्व में ऐसा कोई बलवान नहीं आज सकता। गोपियां कृष्ण के लिए कह रही हैं, भ्रमर से कह रही हैं, अरे भ्रमर भ्रमर नहीं, अरे दूत काले से अब हमारी संधि नहीं हो सकती, कस्मिन कालम, किसी भी काल में नहीं होगी संधि, बड़ा कुटिल धोखाबाज झूठा लबाद, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे और उससे मित्रता हमारी संबंध स्थापित नहीं हो सकता कभी भी, क्यों भगवान है ना। पूर्णिमा जी ने कहा, हम जानती हैं पूर्णिमा जी के बात पर हम विश्वास करती हैं, उन्होंने कहा था जैसे ये पहले जन्म में राम था, काला था, इस समय जैसा काला वैसा ही काला, वो रूप नहीं बदला, कहता है हम तो स्त्री जीत है, अर्थात क्या मैं हाँ वैराग्यवान हूँ, स्त्रियों का वशीभूत कभी नहीं होता, किंतु वशीभूत होकर के अपनी स्त्री को साथ ले लिया, वन जंगल में भी साधु का राम वेश रमाया और अपनी स्त्री को कहा जब तुम भी चले आओ हमारे साथ, स्त्री ने कहा आर्य पुत्र यह हिरण जा रहा है ना, यह सोने के समान सुंदर है, आहा यदि ये पकड़ कर लाए तो अयोध्या ले चलेंगे, अब तो दिन आ गया है, एक वर्ष केवल बाकी है, 11 वर्ष बीत चुके हैं ना, 13 वर्ष, एक वर्ष बाकी है, तो इसको यहाँ रख देंगे और जाएंगे तो भरत जी को उठा देंगे, भरत बड़ा प्रसन्न, और यदि ये पकड़ में नहीं आया, आपने बाण से इसे मार दिया, तो इसको मारने के बाद में चमड़ा उधेड़ कर इसका सुंदर आसन मृग छाल, भरत भैया इस पर बैठने में इसको बड़ा आराम होगा और आप भी इस पर बैठिए जाइए लीजिए। लक्ष्मण ये कार्य एकदम माया है, राक्षसी मायाओं मायावियों का ये कार्य है, आप कृपा करके मत पधारिए, राम को कहा, कार्य नहीं आप ला दीजिए, लक्ष्मण की बात नहीं माना, बात किसकी माना,
अपनी
स्त्री बसा है ना, स्त्री का बसी, और ऐसा व्यक्ति अपने को कह रहा है कि मैं स्त्री का वशीभूत नहीं, और एक दूसरी स्त्री आई कहा है तू आ गई ना, कान काट लिया, प्रेम की भीख मांग रही थी, उसका दोष क्या था, प्रेम से का भीख मांगना ये कोई दोष की बात है, कोई मांग सकता है, किसी के रूप पर फिदा हो सकता है कोई नहीं? और अपना सर्वस्व दे सकता है या दे सकती है कोई, तो उसका तो स्वभाव स्त्री जाति त्रिभुवन का सौंदर्य लेकर के वहां पर प्रकट कर क्यों ना हो जाए, तो इसलिए उसका दोस्त तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया उसका नाक कान कतार लिए, बतलाओ तो कैसे, अरे भाई कोई कारण होना चाहिए, और छिप करके बाली को मार दिया, अरे मर्द थे तो आमने सामने की लड़ाई में युद्ध करके मैं उसको मारते, ऐसे ही बलि सुनते हैं कि बलि भी इनका सत्य युग में यही बने थे, तो बलि ने क्या किया, तीन पर भेमू मारी, जब वो देने के लिए तैयार हो गए विराट धर्म, तो बलि की बेटी थी उसने कहा जा रहे जिस रूप से तुमने मांगा उसी पैर से तुम मांगो, इस पैर से नहीं हन देंगे, बलि जी ने कहा जी आप जाने दो, जो कुछ हो गया तो नहीं इसको मैं मारूंगी, पहले तो मैं अपना पुत्र बनाना चाहती थी, अब इसको मैं पीस दूंगी और उसे मारूंगी, इसीलिए वही उतना हो करके आई इनको मारने के लिए, बेटा के रूप में मांगा था और अंत में जब उसका ये करतूत देखी तो उसने कहा जी इसे हम मारेंगे, तो उसमें क्या किया बलि महाराज जी को बांध दिया, ये सब पृथ्वी माप लिया अपने को भी माप हुआ तभी उसको बांध करके गिरा दिया, जैसे कौवे किसी टोकरी में किसी का खाते हैं उसी आदमी को ठुकराते हैं, ऐसे ये जन इनसे हमारी कैसे बनेगी, यहाँ पर कहने का तात्पर्य उनको ज्ञान है कि ये भगवान थे, क्योंकि पूर्णमासी ने कहा विश्वास है, किंतु भगवान होने पर भी उनका नरलीला का भाव जो हमारे प्रियतम है ये भाव दूर नहीं हुआ और उनसे संधि हम नहीं करेंगे, इसलिए ये मातृजब। यहाँ पर रास में जो कृष्ण जो करोड़ करोड़ रूप धारण किया, रूप नहीं धारण किया, यहाँ पर जो कोटि कोटि जो बने हैं वो बने नहीं थे, यहाँ पर क्षिप्रता और लाघवता है कृष्ण की, क्षिप्रता और लाघवता मैंने क्या, एक ही कृष्ण। राजा जी देख रही हैं यहाँ पर खड़े, और इतनी तेजी के साथ में रास हो रही है कि कभी यहाँ दिखते हैं, कभी वहां दिखते हैं, कभी वहां दिखते हैं, कभी सब इस गोपियां समझते जी हमारे पास। इतनी क्षिप्रता और लगावता के साथ में वो रूप धारण करके, रूप धारण नहीं, वहां पर पहुंच रहे हैं। अलाप चक्र से भी अधिक गति से, जैसे हमने देखा है हमारे यहाँ बनारस की एक नौटंकी गई थी गांव में, तो उस समय उसने 4-5 हजार रुपये लिए थे। उसमें एक नाचने वाला था, वो थाल के ऊपर में नाचता था, उसकी जो यानी खड़ा वो बड़ा सा थाल था उसके ऊपर, और सिर पर हजारों प्रदीप रख करके, हजारों में अधिक प्रदीप रख करके एक घड़ा रखा उसके ऊपर में, वो एक घड़ा एक और बीच बीच में एक थाल और उसके ऊपर में प्रदीप रख करके, और ऐसा नाचता था जो एक भी इधर उधर नहीं गिरता, और थाल के समीप में एकदम कितनी क्षिप्रता के साथ में घूमता था, अद्भुत। तो एक साधारण आदमी ऐसा नृत्य कर सकता है, तो कृष्ण कैसे नृत्य करेंगे? एक कृष्ण भी गोटी गोटी गोपियों में एक ही क्षिप्रता के साथ लाघवता के साथ में घूम रहे। ये नरलीला कम रूप है, इसलिए ये बात अलग रूप नहीं बनाया। द्वारका में अलग रूप बना सकते हैं, ऐसे यहाँ रूप नहीं बनाया, एक ही कृष्ण सब। इसलिए यहाँ न तो काय व्यू है, न तो कृष्ण का कोई अवतार है, न प्रकाश है, न कुछ, एक ही कृष्ण सब गोपियों में, और सब गोपी देख रहे थे हमारे सामने। इसको कहते हैं माधुर्य। ये माधुर्य वैकुंठ में नहीं है, इसलिए इस बेचारे का मन नहीं लगता था क्या करे। उन्होंने नारी पकड़ करके देखा, जैसे ये तो इतना महान चीज चाहता है, अच्छा सब समझो, कब इन चीजों को समझा रहे हैं, किस लिए वहां जाने के लिए किन किन गुणों की जरूरत है, इसके संबंध में आइडिया दे रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर जगत में